मोमिन को क्या करना पड़ता है? क्योंकि बाज दफा हम ये सोच लेते हैं कि चूंकि हम मुसलमान हैं, चूंकि हमने अपना नाम ईमान वाला रख लिया तो काफी है। अब ईमान के अमली तकाजे किन चीजों से पूरे होंगे? फरमाया, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं, नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। लफ्ज़ खुशू और खुदू हमारे यहाँ उर्दू जुबान में भी मारूफ है। खुशू होता है दिल का झुकाव, यानी किसी चीज़ के अंदर दिल का पूरी तरह पड़ा होना। और खुदू, जिसको उर्दू में हम खुजू कहते हैं, बेसिकली स्वाद या स्वाद का एक्सेंट का फर्क है, तो खुदू कहते हैं आज़ा का झुकना। जिसके दिल में खुशू होगा उसके आज़ा में भी खुशू होगा। एक दफ़ा नबी सल्लम ने एक शख्स को नमाज में दाढ़ी के बालों से खेलते हुए देखा, तो फिर आपने यही बात कही थी कि अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसके अज़ा में भी खुशू होता। यह हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, लव खशिया कल्बहु खाजा खशियतिल जवारे, तो गोया के पता चला कि खुशू में इंसान का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है। जब सच्चा ईमान अंदर आता है तो ये नहीं हो सकता कि इंसान अल्लाह के बारे में नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करे। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारा दोस्त है, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, तो चलो भाई अल्लाह ताला से भी वही बेतकल्फी है जो अपने दोस्तों से होती है। हरगिज़ नहीं, अल्लाह वली है, अल्लाह इंसान की मदद करता है, लेकिन इंसान का कोई काम जो भी वो करता है उसको जब अल्लाह के खौफ के साथ करता है और अल्लाह से बेखौफ होकर करे तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और आप देखिए कि जिस तरह हर बीज को इजहार चाहिए होता है ना बाहर निकलने का, और बीज शुरू में खड़ा होता है अपने तने पे, इसी तरह सच्चा ईमान जब इंसान के अंदर आता है तो उसका इजहार नमाज के ज़रिए होता है। आप यहाँ नोट कर लीजिए, आयत नंबर 2 के अंदर नमाज का जिक्र है और खुशू का जिक्र है, और इन्हीं आयात के एंड पे जहाँ ये सिफात पूरी होती हैं वहाँ फिर नमाज का जिक्र आएगा और वहाँ नमाज की हिफाजत का जिक्र है। आयत नंबर 9 में, वल्लज़ीनहुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, खुशू पहले है, हिफाजत बाद में है। तो गोया कि नमाज बराए नमाज नहीं, खड़े हो गए तो ठीक है, यानी कामयाब और बामुराद वो लोग नहीं हैं सिर्फ जो नमाज़ पढ़ते हैं और उनकी पूरी तवज्जो रकअतों की गिनती पूरी करने पर ही लगी रहती है। क्या करना है इसके बाद, क्या करना है, डॉलर का रेट ही गिनते रहें इसके बाद की प्लानिंग्स, बल्कि नमाज पढ़ते हुए उनका दिल अल्लाह के खौफ से रोता है। इनकी नमाजें हकीकत में हकीकी नमाजें होती हैं, वो अल्लाह ताला पर नजरें भी लगा लेते हैं और अल्लाह ताला की पकड़ से बचते भी हैं। और इस तरह से आप देखिए कि इसमें खुशियों से मुराद ये नहीं है कि आप ज़ाहरी तौर पर कुछ ऐसी हरकतें करने लगें कि जिससे लोग आपको बहुत खाशे कहें। एक सहाबी एक दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें निफाक वाले खुशियों से बचा, यानी हमारा अंदर और बाहर दोनों झुका हो, ये ना हो कि अंदर अकड़ हो और बाहर से हम झुके हुए हों। और खुशियों के साथ इंसान जब नमाज पढ़ता है ना तो उस नमाज का दिल पर असर होता है। सूरत बकरा आयत 45 में आता है, वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, नमाज बड़ी बोझल है मगर झुकने वालों के लिए, आजजी रखने वालों के लिए नमाज अहम होती है। अब देखिए कि नमाज पूरी जिंदगी का आईना है। अगर किसी का नमाज में दिल नहीं लगता तो मान लीजिए ताल्लुक कमजोर है। आज नमाज की जो हालत है कल क्यामत के दिन वो अल्लाह के सामने खड़े होने की हालत में बदल जाएगी। आप कह लीजिए कि नमाज में खड़ा होना अल्लाह के आगे खड़े होने की रिहर्सल है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। फरमाउन में क्या आता है, खराबी है, तबाही है नमाजियों के लिए। ये क्या बात हुई, नमाजियों के लिए? हाँ, अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साखून, जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं, बेवक्त पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर उनका दिल नहीं लग रहा होता, और वो बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं कि तन्हाई की नमाजें वैसी नहीं होती जो लोगों के बीच की नमाजें होती हैं। याद रखिए कि मुनाफिक को मुनाफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके कॉल और फेल में तजाद होता है। इसी तरह से इंसान की नमाज उसके अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की खबर देती है। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि बंदे का ताल्लुक़ दुरुस्त हो अल्लाह ताला के साथ, और दुरुस्त ताल्लुक़ के साथ दुरुस्त नमाज पढ़ी जाती है। हज़रत मूसा को क्या कहा गया, अकीमिस सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम कीजिए मेरी याद के लिए। तो जब नमाज में अल्लाह याद ना आए तो उस नमाज का क्या फ़ायदा? ठीक है पढ़ें, बग़ैर खुशू की पढ़ें पढ़ें। बस लोगों को शैतान ने एक और धोखा दिया, जी हम जब पढ़ेंगे ठीक पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ते ठीक तरह तो मज़ा नहीं आता। नहीं, आपकी टेढ़ी मेढ़ी नमाजें इंशाल्लाह आपको खुशू की नमाज की तरफ ले जाएंगी, ये जीना बन जाएंगी आपकी कामयाबियों का। लेकिन अगर पढ़नी छोड़ दी तो फिर वो बिल्कुल एक ऐसी स्लोप होगी जिसके ऊपर चढ़ना फिर बाद में मुश्किल होगा। जिस तरह की भी पढ़े पढ़े, छोड़नी नहीं है। आगे जो हाफिज उनकी बात आएगी उसको और इसको दोनों को जमा करके यही नमाज की रूह की बात कर लूं, तो पहली बात है कि नमाज फर्ज है और खुशू वाली नमाज पढ़ना हमारा गोल होना चाहिए। इसके ऊपर नमाज में खुशू कैसे कायम करें, जो मैंने इस लेक्चर का जिक्र किया था जन्नत के वारिस, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जमा किए हैं, आप सुन सकते हैं जब भी मौका मिले, कि नमाज में खुशू कैसे आता है। वक्त से पहले तैयारी करें, वुजू करके बैठें, जगह का सही इंतखाब करें, फिसलने वाला दुपट्टा ना लें, सी थ्रू कपड़े ना हो, उन्हीं को समेटते रहते हैं, आधी बाजू होती हैं कमीज़ों की तो उसी को बाद दफा कोनियों को छुपाते रहते हैं, बाद दफा टखने खुल जाते हैं, बाद दफा छोटी शर्ट होने की वजह से बैक खुल जाती है, ऐसी नमाजों में खुशू नहीं आता। बाथरूम से अपने आप को फारग करें, सारी चीज़ों से आज़ाद करें, जहन में कुछ और तफक्कुरात हों तो फिर नमाज नहीं होती। नमाज में वो सारी बातें याद आती हैं। 10-15 मिनट पहले जो अजान दी जाती है उसका मकसद ही ये होता है कि इंसान अपने आप को फारिग करे। बड़ी तकलीफ़ की बात, ऐसे किसी से जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ 98% मुस्लिम है। खुशी की बात है, तो मुझे तकलीफ़ क्यों हुई अगली बात सुनकर, कि 98% मुस्लिम्स में से सिर्फ 2% लोग नमाज पढ़ते हैं और रमज़ान में 10% पढ़ने लग जाते हैं और मस्जिदों में जगह नहीं होती। और अगर सारे पाकिस्तानी नमाज पढ़ने लग जाएं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें, मस्जिदें बन जाए, कि हमारे लिए अनफ मस्जिदें नहीं है, ये हालात हैं आज हमारे, तो फलाह कहाँ से आएगी। अल्लाह के नबी का मामला तो ये था कि जब आप पे कोई अमर मुश्किल होता आप नमाज की तरफ दौड़ते, खुशी की खबर सुनते नमाज, गम की खबर सुनते नमाज, इस्तखारा करना है तो नमाज, दुख दर्द बारिश मांगनी है तो नमाज, नमाज नमाज बंदे मोमिन का दिल अटका रहता है। बिल्कुल वही ताल्लुक जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से या एक सहेली को दूसरी सहेली से होता है, वही बंदे का अल्लाह के साथ नमाजों में होता है। आप महसूस करेंगे कि जब नमाजें छुट्टी होती हैं तो ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है, और फिर शैतान के कहने पे अगर उन दिनों में दुआएं भी छोड़ दें और सुबह उठना भी छोड़ दें और कह दें जी हमें तो पढ़नी नहीं, तो वह एक दिल पर ऐसी कालस पड़ती है कि बाज़ दफ़ा फारिग होने के बाद भी कई दिन तक सिर्फ लटका लटकी में लोग नमाज़ें नहीं शुरू करते। तो नमाज़ पढ़ना अल्लाह ताला के साथ कुर्ब की अलामत है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत इंसान बनाएंगी। अब देखिए, इन सारी चीज़ों का रब्त है, सबसे पहले सच्चा ईमान आया, अंदर अल्लाह से मोहब्बत हुई तो उसका इजहार नमाज में हुआ, जो ही नमाज में आए तो वो लोग लफ बातों से एराज करते हैं। लफ क्या है? बेकार बातें, चिड़ियों के चूंचू करने को लफ कहते हैं, बेमकसद, बे इरादा, बे वजह, इसमें बातें भी आती हैं, काम भी आते हैं, चीजें भी आती हैं, यहां सिर्फ बातें नहीं मुराद, हाँ बातों में है गॉसिप, चुगलियां, उसने इधर का कितना फालतू बोलते हैं हम, कभी आपने सोचा? ऐसे ही आदतन वो बातें जो सब कर रहे होते हैं, वही क्या हाल है, कैसा है, सब ये है वैसे हैं, बस अब हमें उनके सब के जवाब पता होते हैं, मौसम कैसा है, सियासत कैसी चल रही है, चूं चा चा ची करते रहते हैं और अपने अल्फाज को हम जाया करते रहते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि लव में काम भी आते हैं, लव के अंदर इंसान के बेमकसद मशागिल भी आते हैं, वक्त को बेकार जाया करना ये भी लफ्जियात का हिस्सा है। आप देखिए कि जब बंदा मोमिन को अपनी जिंदगी के मुख्तसर होने का यकीन होगा ना, तो वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा कि अपने आप को इतना जाया कर दे, मेरा वक्त जाया हो, और उसके घर क्या हुआ, उसने क्या किया, उसका क्या मामला है, भाई आपको क्या लगे या मुझे क्या लगे, तो जिंदगी से हर बेकार चीज को खोल के फेंक देना है। बेकार जिसमें ना दुनिया का फायदा ना दीन का फायदा। इंसान होने के नाते थोड़ा बहुत इंसान इन चीज़ों में कभी अगर पढ़ने लगे तो फौरन औज़ुबिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए। और ये कब होता है? जब बंदा फारिग होता है। मसरूफ बंदे के पास तो कहते हैं कि मरने का वक्त नहीं है, वो किसी की बातें कहाँ सुनेगा। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि सूरत हज के आखिर में जाहिदु फिल्लाहि हक्क जिहादी का सबक था, और यहाँ बता दिया कि जब बंदे की ज़िंदगी में एक मकसद होता है तो फिर वो संजीदा इंसान बनता है, और संजीदा इंसान बेमकसद चीज़ों से दूर हो जाता है। देखिए, दो किस्म के इंसान हैं, एक होते हैं आखरत ओरिएंटेड और एक होते हैं दुनिया ओरिएंटेड। आखिरत ओरिएंटेड कौन है जिनकी नज़र आखिरत पे लगी हुई है? एक अच्छे ताजिर की तरह वो अपने वक्त की एक एक घड़ी को एक एक डॉलर और एक एक पाउंड समझकर और उससे भी कीमती समझकर वो इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं। किसी ताजिर को अगर आप करोड़ों रुपया भी लगाते देखें तो कभी अफसोस ना करें, यकीन करें कि वो करोड़ों लगाकर उसमें से अरबों निकालेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना। इसके बरक्स एक बच्चा खर्च करेगा तो हो सकता है चंद सौ भी ज़ाया करके आ जाए। तो मोमिन एक कामयाब ताजिर होता है, वो अपने वक्त को इन्वेस्ट करता है, वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपने लिए क्राइटेरियन लिख ले। खुद को रात को सोते वक्त पूछे, आज टाइम वेस्ट किया या टाइम इन्वेस्ट किया। अब आप देखिए, इसमें हम अपने थोड़े से मशागिल को भी एक नज़र से समझ जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या करते हैं। बस आप देखिए कि अमूमन हम जायज़ कामों पर भी वक्त ज़रूरत से ज़ायद लगाते हैं। खाना पकाना अच्छी चीज़ है, रात जाते लंबे चौड़े झंझट डाल लेते हैं और टेस्ट फिर कोई नहीं आता खाने के पकाने के बाद, और टाइम हमारा सारा चला जाता है और जाने वाले आपको क्या अवार्ड दे के जाते हैं। वो खाने पकाइए जो कम वक्त पकाने में भी लें और खाने में भी और हजम में भी। पहले पकाने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं हम, फिर खाना खाना उनको बड़ा मुहाज होता है, और खाने के बाद फिर जब तक ऊपर कुछ और ना खा पी लें वो हजम भी नहीं होता। कितना लंबा प्रोसेस हमारा शुरू होता है, सिंपल इजी गोइंग। आप देख लीजिए हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जिनको आप वेस्टर्न लोग कह लें, नॉन मुस्लिम कह लें, अरब कह लें, बहुत सिंपल खाने उनके। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड खाने बरेसगीर पाको हिंद के, इंडियन पाकिस्तानी जो मेरे इल्म में, बाकी हर तरह के पका के देखे हैं। सबसे आसान दूसरे खाने और सबसे मुश्किल हमारे अपने खाने हैं। कितना वक्त है आपकी ज़िंदगी में और उसका नतीजा क्या निकलता है? थोड़ी देर का टेस्ट, और वो टेस्ट क्या जो आपकी ज़ुबान जला दे। फिर इसी तरह आप देखिए कपड़े पहनना, कपड़े पहनना आज हमारे यहाँ वल्लाही जाहिदु फिल्लाह का जिहादी हो गया। जो हालात हैं इसकी तो कोई बात ही ना पूछे। कितना वक्त औरतें ज़ाया करती हैं, पानी की तरह पैसा बहाती हैं। जितने में कल के दौर में एक जोड़ा बन जाता था, इतने की तो आज लैस डोरी भी नहीं आती, इतने का तो उसका सिलाई नहीं आती जितने में जोड़ा आता है। पहन के आपने बन क्या जाना है? कौन सी हूर परी आप लगेंगी? कौन सा आपको अवार्ड मिल जाएगा? फिर आप देखिए कि अपने आप को सजाने के नाम पे जो पार्लर्स के अंदर जो वक्त है, और चले ठीक है एक खास हद तक पहनना ओढ़ना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इसको ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना। मोमिन का वक्त बहुत कीमती है, लघवियात में नहीं जा सकता। आप देखिए कि अगर आप बहुत भी मेहनत खुद पे करेंगे, 5,000 रुपया देकर आप सर से पाँव तक रेनोवेट भी हो गए, कितने खुशीन लगेंगे आप। झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए अगर आपने चेहरे पर कुछ ट्रीटमेंट करा लिया, अंदर की कमज़ोरियाँ आपकी कौन दूर करेगा? उम्र तो नहीं छुपती, बल्कि बूढ़े के चेहरे पे झुरी नहीं होगी तो जो थोड़ा बहुत उसकी रिस्पेक्ट लोगों ने करनी थी और उसकी खिदमत करनी थी वो भी नहीं होगी। अंदर उसके उतना ही वीकनेस है जो उस उम्र में होती है। कभी आप देखें बाल काले करने, कभी कुछ करना, महदूद ज़िंदगी में गैर महदूद जन्नत को पाने के लिए काम करना। मोमिन का वक्त गुजारने की चीज़ नहीं होती, इस्तेमाल की चीज़ होती है। जब हमारे सामने आखिरत होगी तो हम कभी भी इस चीज़ को दूसरी तरफ नहीं लेंगे। आज आप देखिए दो फिक्रे हैं अमूमन हमारे इर्द गिर्द लोगों को। नंबर एक फिक्रे माश, मर्द कमा रहे हैं। किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि अगर इसके बाद एक पैनी भी आपके रिस्क में ना बढ़े जो है इस वक्त आपको, तो आपकी 8-10 नस्लें खाना पानी बेसिक्स खा सकती हैं। आप क्यों हर वक्त हलकान होते हैं पैसे के लिए और इधर से उधर उधर से इधर? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद सेहत, और सेहत के साथ सुकून है। पैसा भी अगर आपको सुकून नहीं दे रहा क्या फ़ायदा? लेकिन हमारे मर्द देखिए मशीन की तरह कमाते हैं, उनकी कोई डेडलाइन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है कि भाई इतना हो गया तो दैट्स फाइन, आज रात हम मियाँ बीवी बच्चे बैठ के खाना खाएंगे। वो उस दिन एक और बड़ी डील में, खाने में भी जो साथ फ़ोन पे बातें, मैंने कहा मैंने तो दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं देखा कि जहाँ रात 10 बजे फ़ोन पे भी आप लोग कारोबार की बातें करें। कहते हम काम करने वाले लोग हैं, ये कैसा काम है जो आपको खाना भी नहीं खाने दे रहा, जो आपको आराम नहीं करने दे रहा। लेकिन फिक्र लगी हुई है, एक माश की और दूसरी फिक्र है फिक्र लघवियात, फिक्र आखिरत का तो वक्त ही बहुत थोड़ों के पास है। क्या आसाइशें आ जाएं घर में, कैसे हो क्या हो। आप देखिए ज़िंदगी को मज़े से नहीं मकसद से गुजारना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह इस दुनिया की वो चीज़ें जो तूने मुझे दी हैं वो तेरे कुर्ब का ज़रिया बन जाए, और जो चीज़ें तूने मुझसे ली हैं उनका जाना, उनकी फरागत मेरे दिल को तुझसे जोड़ दें। آج بھی سچی خوشی اس کو ملے گی جو لغو کو ختم کرے گا. اب 17 پارے آپ نے پڑھ لیے, شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی لغو نہیں نکلا. چلے آپ کہتے ہیں ہم نے فلمیں چھوڑ دی, گانے چھوڑ دیے, ٹھیک ہے کثیر لغو چھٹ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری لغویات ہیں. زندگی مشکل, ایک شادی ہونی ہو ہماری زندگی کس طرح جیرن ہوتی ہے. تو آپ اپنے لیے خود چوز کریں, میری زندگی میں کہاں کہاں لغو ہے اور مجھے کہاں اس کو نکالنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایات میں آتا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس طرح سے آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ اللہ مجھے میری دنیا کی نعمتوں میں سے عبادت دے. حدیث میں آتا ہے کہ مجھے خوشبو اور عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہ نسائی کی روایت ہے. ایک انصاری صحابی نے نماز کے وقت اپنی لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ, نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں. تو سننے والوں کو ان کی یہ بات گراں گزری کہ یہ کیا بات ہے, نماز پڑھ کے راحت ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت بلال سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ. ہمیں پہنچتی ہے, بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے اپنے آپ کو نمازوں کے ساتھ رہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ مومن کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے, تو مومن کی انٹرٹینمنٹ اس کی عبادت سے ہے. لوگ اچھے کپڑے پہن کر, شاپنگ کر کر, اچھے کھانے کھا کر, ہوٹلنگ کر کر وہ خوشیاں نہیں پاتے جو وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اندر خوشی پاتا ہے. تو لہٰذا ایسی دعائیں ہیں بہت خوبصورت, مسنون دعاؤں میں کچھ دعائیں, آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر حقیقت میں زندگی سے لغو نکل گیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہوگی. آپ لکھ کے دیکھ لیں میرا زیادہ وقت کہاں جاتا ہے ایسی بیکار مشغلوں میں. آپ کے مال میں برکت ہوگی, پیسے بیکار کدھر جاتے ہیں آپ خود دیکھیں, کام کی چیزیں تو تھوڑے سے پیسوں میں آ جاتی ہیں, لیکن بیکار چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ وقت لیتی ہیں, مال لیتی ہیں. اور آپ دیکھیں 21 پارے کی پہلی آیت میں اس آیت کا خلاصہ کر دیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو بہت زیادہ ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو بھی دنیا اس نے ہمیں دی ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے, اور وہ چیزیں جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہیں ان کو پا کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکے. ایک دعا ہے اللہ کے نبی کی, آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے, اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ مجھے دے اپنی محبت, یعنی مجھے عطا کر اپنی محبت, و حب من ينفعنی حبہ یا حبہ عندک. پھر اس کو پڑھتی ہوں, اللہم ارزقنی حبک و حب من ينفعنی حبہ عندک, اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب, اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. اب اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے. اے اللہ تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے, کبھی کبھی دنیا نہیں ملتی نا, تو کہا جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. بعض دفعہ کوئی نعمت نہیں رہتی, ہم اسی کے روگ میں ڈپریشن میں چلے جاتے, نہیں نہیں رہی وہ نعمت, کوئی بات نہیں میں اس وقت کو اللہ کے لیے لگاؤں گا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ سکون کا نسخہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے لغویات کو نکال دے. جب زندگی سے لغو نکل جائے, پہلے نماز تھی, نماز آئی, لغو چلا گیا, اور ایسا شخص کبھی بھی اپنے آپ کو پھر دکھی اور پریشان نہیں سمجھتا کہ میری زندگی میں تو کوئی خیر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اس کا لامحالہ نتیجہ پھر کیا ہوگا, کیسے بندے کے اندر और अच्छे काम करने का मौका भी आएगा, और वो इन कामों को करने के बाद फिर अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत भी ज़्यादा महसूस करेगा। इसलिए इस आयत के आगे आप देखिए कि फरमा दिया कि वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जो अदा करते हैं ज़कात को अदा करने वाले हैं। इस आयत पे थोड़ा सा उलमाए कराम का एक कह लीजिए कि गौर व फिक्र है। कहते हैं कि मक्की सूरत है और मक्का में तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी, तो यहाँ ज़कात क्यों आई? इसके जवाब में वो कहते हैं कि ठीक है, ज़कात का असल हुक्म मदीना में जाके मिला, लेकिन यहाँ जहन साजी कर दी गई। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे भी होता है। बहुत सारे इशारे ऐसे मौजूद हैं, जैसे शराब का पहले जहन बनाया गया फिर उसको हराम किया गया, इसी तरह ये भी मुमकिन है। लेकिन दूसरी राय जो उलमा की है वो लफ्ज़ फ़ाइलून पे गौर करते हैं। पूरे कुरान में जहाँ भी ज़कात की बात आती है तो क्या कहा जाता है? आतुस ज़का, ठीक है, ईताए ज़का, देना। यहाँ ईता की जगह फ़ाइलून का लफ्ज़ है, ठीक है, तो फ़ाइलून करने वाले फ़ाइल हैं। तो वो कहते हैं कि ये अंदाज़ बताता है कि यहाँ ज़कात का लफ्ज़ अपने असल मानों में आया है, ना कि शरई मानों में आया है। और ज़कात का लफ्ज़ असल मानी उसका क्या है? पाक करना, तज़किया नफ्स। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि यहाँ मुराद है कि वो लोग अपने नफ्स का तज़किया करते हैं। जब जिंदगी से लफ्ज़ निकल जाता है तो हकीकत में इंसान पाक होता है। जिस्म की सफाई की तरह रूह की सफाई भी लाजमी होती है। मुसलसल काम है, बार बार किया जाता है, हर रोज़ किया जाता है। इसीलिए यहाँ फ़ाइलून कहकर बता दिया कि ऐसे किरदार जब किसी मुआशरे में होंगे तो पूरे का पूरा माहौल पाक हो जाएगा। क्योंकि ज़ाती तज़किए के साथ साथ माहौल का तज़किया भी लाजमी है। आप अपना घर साफ कर लें, बाहर गंदगी होगी, फिर थोड़ी देर में दोबारा गंदा हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि जल्दी में आप सफाई कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ें इधर उधर डालते हैं, एक दिन के बाद दोबारा घर गंदा हो जाता है क्योंकि सही तज़किया नहीं हुआ था। और जब रूट्स के साथ सफाई की जाती है, डीप रूटेड, तो आपको सुकून बहुत मिलता है। बिल्कुल यही बात करके कैसे लोग ये जितनी खूबियां अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ बताई हैं इन पे अमल करते हुए अपने किरदार को इतना खूबसूरत कर लेते हैं कि फिर उनकी ज़िंदगी में पाकीज़गी आ जाती है। और आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ की सफाई ज़्यादा अरसा ना की जाए तो वो सख्त होने लगती है। कभी आपने देखा हो फर्नीचर है, उस पर मिट्टी पड़ रही है, एक वक्त आएगा उसकी असल चमक खत्म, उसके ऊपर धब्बे पड़े हुए, दीमक लग जाएगा। इसी तरह नफ्स की जब सफाई नहीं की जाती ना एक अरसे तक, तो वो सख्त होने लगता है। इसलिए इंसान को अल्लाह ताला यहाँ मैसेज देते हैं कि तुम अपने आप को पाक रखो। और ज़कात कहते हैं किसी चीज़ को उम्दा तरीके से पाक करना और बढ़ाना, दोनों लफ्ज़ हैं, बढ़ाना और पाक करना। और हकीकत है कि ज़कात से माल बढ़ता भी है और पाक भी हो जाता है। जिस्म के अंदर कोई बीमारी हो, जब आप उस बीमारी को दूर करते हैं तो फिर आपकी सेहत भी अच्छी होने लगती है। तो दिल से माल की मोहब्बत भी ज़कात के ज़रिए से निकलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ज़कात देने से माल कम होगा, हालांकि सदका देने से माल बढ़ता है। तो गोया के सारी बात का खुलासा कि ज़कात-ए माल की तरह ज़कात-ए नफ्स का तज़किरा है, दोनों को सही करना है। और तज़किए का आगाज़ शिर्क से बच के होगा। सबसे पहले सोच का तज़किया, फिर आमाल का तज़किया। बिदत से बचना है, बदगुमानियों से बचना है, गीबत से बचना है। कामयाब इंसान तज़किए पर ही अपनी नज़रें रखते हैं। सूरत अल आला आयत 14 में हम पढ़ेंगे, कद अफलह मन तज़क्का, बेशक फलाह पा गया वो जिसने तज़किया किया अपना। सूरत शम्स आयत 9 और 10 में आता है, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, तहकीक फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और बर्बाद हो गया वो जिसने इसको दबा दिया। इसी तरह हम सूरत नूर में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े वाक्य के बाद फरमाया था, फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर अल्लाह का फजल ना तुम पर होता, मा ज़का मिनकुम, तुम में से कोई भी पाक ना होता। सूरत निसा आयत 49 में भी यही बात आती है, फला तज़क्कू अनफुसकुम, खुद को पाक ना समझा करो। तो बात का खुलासा यह है कि फिर एक ऐसी खूबसूरत सोसाइटी होगी कि जहाँ लोगों की नज़रें भी पाक होंगी, लोगों के माल भी पाक होंगे, और वो अच्छे से अच्छे काम करेंगे। सूरह फुरकान आयत 72 में आता है, वह इज़ा मर्रु बिल लघ्वी मर्रु किरामा, عباد الرحمن کون ہوتے ہیں کہ لب کے پاس سے کبھی گزر بھی ہو جائے تو عزت سے گزر جاتے ہیں، بیٹھیں گے نہیں. اور آپ ایک بات دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں میں دو دفعہ تو مجھے یاد ہے اس وقت، اور باقی بھی کہیں ہو، کہ قرآن میں آتا ہے کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ اور لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح 29ویں 30ویں پارے میں بھی آتا ہے کہ جنتی جنت میں لغو نہیں سنیں گے. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے دنیا میں لغو کی عادت ڈالی ہے وہ خود کو کتنا زیادہ پریشان کر رہے ہیں.